بھی جاؤ کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. پیارے پیارے سائیں بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, یو آر واچنگ اسپیشل عید ٹرانسمیشن آن مدنی چینل 24 hours a day. یہ دیکھیے گا ذرا یہ کیا ہے. دس از سی وی کریکولم وٹائے. This is an introduction. ایک انسان کی اسپیشل یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے. اس میں اس کا نام, پرسنل انفارمیشن, ہابیز, اس کا کیریئر, اس کا تجربہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک انسان کا سی وی ہوتا ہے, ہر پھل اور ہر سبزی اور ہر کھانے کا بھی ایک سی وی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا پراپرٹیز ہیں, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, منرلز, پروٹینز اور سارا کچھ جو ہوتا ہے, کون سی چیز کتنی اس کے اندر ہے تاکہ اس کو یوں استعمال کیا جا سکے, اور اسی کے حساب سے فوڈ کی ریکوائرمنٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور جو غذائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمائیں, جو آپ کی مرغوب غذائیں تھیں, آج 1400 سال بعد ماہرین ثابت کر رہے ہیں کہ ان غذاؤں میں کس قدر فائدہ ہے. دے آر گریڈڈ سپر فوڈ with best nutritional profile. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذائیں ہیں ان کا جو سی وی ہے وہ بھرا ہوا اور سب سے بہترین ہے. دیکھیے ہر کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ جانا چاہ رہے ہیں, اس جگہ پہ جانے کے بھی مختلف راستے ہوں گے, اور کوئی گول ہے آپ کا, کوئی مشن ہے, کوئی مقصد ہے, تو اس کو حاصل کرنے کے بھی مختلف طریقے ہوں گے. جس طریقے سے کوئی انسان تجارت کرنا چاہ رہا ہے مختلف طریقے ہیں. دنیا میں 8 ارب لوگوں نے کھانا کھانا ہے زندہ رہنے کے لیے, دنیا میں 8 ارب لوگوں نے پانی پینا ہے زندہ رہنے کے لیے. تو کھانے کے جتنے طریقے بیان کیے جا رہے ہیں دنیا میں, سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. پانی پینے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے؟ وہ طریقہ جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا رہنمائی مل رہی ہے. اس کے لیے علم حاصل کریں, اچھا ماحول اختیار کریں. آئیے بڑھتے پہلی غذا کی طرف. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ, کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے, کبھی کشمش اور کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس نوش فرماتے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ بہت پسند تھا. آپ نے فرمایا گائے کا دودھ پیا کرو, وہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے. قرآن مجید میں آیا بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں, اور وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے. قرآن پاک کی اس آیت کو سننے کے بعد اب غور کیجئے, گائے ایک عجائبات میں سے ہے. اس کے پیٹ کا سائز بہت بڑا ہے, 50 گیلن کا اس کا پیٹ ہوتا ہے. اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. جب یہ کھانا کھاتی ہے تو نگل لیتی ہے, چبا نہیں سکتی, دانت اس کے کم ہوتے ہیں. وہ کھانا اس کے پیٹ میں جاتا ہے, پھر دوبارہ سے منہ میں آتا ہے, پھر اس کو جگالی کرتی ہے. اسے کہتے ہیں ٹو رومینیٹ دی کڈ, اور اب وہ پھر پیٹ میں جاتا ہے اور گوبر اور خون کے درمیان سے صاف اور بہترین دودھ وہ برآمد ہوتا ہے. تو دودھ کے امیزنگ بینیفٹس کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. بچپن میں دودھ پیتے پیتے بچہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے. یہ ایکچولی ٹرپٹوفین ایک چیز ہوتی ہے دودھ کے اندر, اٹ از اے سلیپ انڈیوسنگ ایجنٹ. یہ ڈیری جو پروڈکٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ہوتی ہے. 8 اونس دودھ کے گلاس میں 106 ملی گرام ٹرپٹوفین ہوتا ہے, اور اس سے جب انسان پیتا ہے تو اس کو نیند آتی ہے. جس طرح رات کو اگر آپ سونے جا رہے ہیں کچھ دیر پہلے گرم دودھ پی لیں تو یہ نیند آور ہوتا ہے. ہزاروں سال سے پوری دنیا میں دودھ استعمال ہو رہا ہے. دودھ میں وہ اجزاء اور نیوٹرینٹس ہیں جو عام طور پر ہر انسان کے لیے ضروری ہیں, لیکن انسان وہ ریگولر ڈائٹ سے نہیں لے پاتا. نیوٹرینٹس آف کنسرن اس کو کہتے ہیں, اینڈ اٹ از انڈر کنزیومڈ بائی مینی پاپولیشن. تو گائے کے دودھ میں کنجوگیٹڈ لینولیک ایسڈ ہوتے ہیں और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी हैं, ये दोनों मिलकर बहुत सी हेल्थ को मदद देने की वजह बनते हैं, जिनमें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। और एक कप दूध में 8 ग्राम प्रोटीन है, जो कि ग्रोथ और बॉडी डेवलपमेंट के लिए, सेल की रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट्स ए कंप्लीट प्रोटीन। और ये तो बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना, दूध पियो तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत होंगी, बिल्कुल ठीक कहा जाता है। इट इज राइटली सेड दैट मिल्क इज हैविंग ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर बोन्स। देखें, आपके जिस्म की 99% कैल्शियम वो हड्डियों में और दांतों में है, और दूध के अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कैल्शियम को अच्छी तरह जज्ब करने में मददगार साबित होते हैं। यानी दूध के अंदर ऐसे अज्जा हैं जो कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मददगार हैं। तहकीक साबित है कि दूध पीने वालों को फ्रैक्चर और हड्डियों की दीगर बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। होल मिल्क इस्तेमाल करने से वजन नहीं बढ़ता। दूध और भी बहुत सी चीज़ों में डलता है, योगर्ट, दही, सीरियल्स वगैरह में। बहरहाल बाज़ लोगों को दूध हजम नहीं होता, इसे लैक्टुलोज इंटॉलरेंस कहते हैं। खालिस दूध पीने से उनका पेट खराब हो सकता है, वो अपने मौलिस से मशवरा करें। और बहुत से किस्म के दूध हैं जिसमें कोकोनट मिल्क है, आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ सहाबा किराम ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को इल्म दीन हासिल करने में मसरूफ कर दिया था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना मेहमान बना लिया था। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला ने भी उन्हीं में से थे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा को बहुत सख्त भूख लग रही थी, वो एक ऐसी जगह बैठ गए जहां से लोग गुजरते थे। कुछ देर के बाद वहां से अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने गुजरे। हजरत अबू हुरैरा ने उनसे कुछ पूछा और उनका मकसद यह था कि वो मुझे पेट भर कर खाना खिला दें, मगर ऐसा ना हुआ। फिर हजरत उमर फारूक वहां से गुजरे, उनसे भी कुछ पूछा, मकसद वही था, लेकिन वो भी चले गए। कुछ देर बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां से तशरीफ ले जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा को देखा और मुस्कुराए, और आपने अबू हुरैरा के दिल की बात जान ली और फरमाया, अबू हुरैरा मेरे साथ घर चलो। जब घर पहुंचे तो वहां पर दूध से भरा एक प्याला रखा हुआ था। आपने उनसे फरमाया, जाओ हमारे सभी मेहमानों को बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा ने दिल में यही सोचा, काश ये दूध मैं पी लेता तो मेरा पेट भर जाता। जिनको बुलाने के लिए भेजा है वो तो बहुत ज्यादा है। खैर, दोनों जहां के आका का हुक्म था वो बुलाकर ले आए। अब पूरा घर मेहमानों से भर चुका है, अब सब मेहमान अपनी अपनी जगह बैठ चुके। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को हुक्म दिया, ये प्याला पकड़ो और सबको बारी बारी पिलाते जाओ। मैंने दूध से भरा प्याला उस एक को दिया, उसने पेट भरकर पिया, हज़रत अबू हुरैरा फरमा रहे, और फिर मैंने प्याला दूसरे को दिया, यहाँ तक कि मैंने वो प्याला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस पहुँचा दिया। सारा फिर गया वो प्याला, घर में जितने हजरात को बुलवाया था सबका पेट भर गया। अब आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में प्याला था, हज़रत अबू हुरैरा की तरफ देख कर मुस्कुरा और फरमाया, पियो। उन्होंने पिया, दोबारा फरमाया, और पियो। उन्होंने फिर पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते रहे और वो हर बार पीते रहे। आखिर में उन्होंने कसम खाकर कहा, हुजूर अब कोई गुंजाइश नहीं, पेट भर चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लिया और अल्लाह पाक की हमदो सना की और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के बाकी दूध भी नोश फरमाया। दूध का जिक्र भी हुआ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबरदस्त मौजज़े का भी जिक्र हुआ। तो प्यारे प्यारे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए एक टिप लेते चलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फूड आइटम है वो ऑयल यानी खुर्दनी तेल है। बाज़ ममालिक में औसतन एक इंसान साल में 3 से 4 किलो ऑयल इस्तेमाल करता है, और बाज़ मुल्कों में 12 किलो ऑयल एक बंदा साल में इस्तेमाल करता है। ये स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। कुकिंग ऑयल की रोज़ाना की रिक्वायरमेंट 4 चमचे हैं चाय के, बस। दिल के मरीज के लिए 2 चाय के चम्मच हो जाएंगे, बच्चों के लिए 5 हो सकते हैं, लेकिन ये चिकनाई शरियानों में जम जाएगी, दौरे का सबब पड़ सकती है, दिल का दौरा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। तो मजीद ये बात भी आपको शेयर करता चलूँ कि चीनी और नमक की जो रिक्वायरमेंट इंसानी जिस्म मौजूद होती है, अगर ऊपर से आप एक कतरा एक ज़र्रा भी नमक नहीं छिड़केंगे और एक ज़र्रा भी चीनी नहीं छिड़केंगे, इट विल नॉट अफेक्ट, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहली मकदार वो मौजूद है। तो बहरहाल ये जो खाना हम खाते हैं ये बहुत ज़रूरी है, इसकी जिस्म की तामीर इससे होती है, ग्रोथ और रिपेयर इससे होती है, और भी बहुत से काम ऑब्वियसली खाना खाएंगे तो चलेंगे, ये इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। आइए अब नेक्स्ट फल की तरफ बढ़ते हैं। ये तरबूज, मौसम गर्मा का नहायत मुफीद फल। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर मिलाकर इस्तेमाल फरमाते और फरमाते, हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ और इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। गर्मी दूर करने के लिए तरबूज का शरबत भी पिया जाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, खाने से पहले तरबूज खाना पेट को खूब धो देता है और बीमारी को जड़ से खत्म करता है। एंड रिमेंबर द रूल कि फल खाने से आधा घंटा पहले खाया जाए, ये फायदा ज्यादा देता है। तरबूज कसरत से खाना गुर्दों के दर्द से निजात का सबब है। तरबूज का शरबत दिल को फरहत पहुंचाता है। एहतियात, तरबूज खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इसका नुकसान हो सकता है। वो खाने जिनमें खुद पानी होता है ना ज्यादा, उनके बाद पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो बहरहाल तरबूज को वाटरमेलन क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल तरबूज वाटरमेलन? अगर आप एक फाड़ी तरबूज की बाइट लेना तो उस एक बाइट के अंदर 92% पानी होगा और 8% शुगर होगी, इसलिए इसको वाटरमेलन कहते हैं। ये फल भी है और सब्जी भी है, ये दोनों चीजें जिसकी काश सबसे पहले अफ्रीका के गर्म सहराओं में शुरू की गई जहां पानी की अशद जरूरत होती है। ये चाइना और जापान में बेहतरीन तोहफा गिफ्ट वो तरबूज है। और देखिए वाकई गर्मियों में बिलखसूस रमजान जैसे भी गुजरा, ठंडा ठार तरबूज पी लेने से प्यास बुझती है। और तरबूज को खाने से पहले पुदीने और नींबू के साथ खाना, यानी खाने से पहले अब तरबूज को पुदीने और नींबू के साथ खाएंगे तो ये भूख को बढ़ाएगा। इसे सलाद में डालें, तरबूज का शरबत बनाएं। और बाज मुल्कों में तरबूज को आलू के चिप्स की तरह काटकर फ्राई भी किया जाता है। वैसे तरबूज खरीदना ये एक बड़ी रिस्की सरमायाकारी है, कोई पता नहीं कि आप जो तरबूज खरीद रहे हैं मीठा निकलता है या मीठा नहीं निकलता। इसकी निशानी है ऊपर उसके एक येलो पैच बना होता है, उसको थोड़ा सा जरा बजाएं तो एक आवाज उसमें से आती है। ये बड़े आपको समझाएंगे कि तरबूज का मीठा होना इसकी अलामत क्या क्या है। बहरहाल ये तरबूज है जनाब जिसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम का ये खजाना है। लाइकोपीन इसमें एक अहम तरीन चीज है, इसका रेड कलर भी उस वजह से होता है। ये कैंसर से बचाती है, दिल की सेहत के लिए अच्छी है, पट्ठों की सोजिश अकड़ाव जिसे क्रैम्प्स कहते हैं उसके अंदर ये बहुत फायदेमंद है। एक तरबूज में 300 से 500 तक बीज होते हैं। और ये जो कहा जाता है कि तरबूज के बीज ना खाओ तुम्हारे पेट में तरबूज का पौधा उगाएगा, अव्वल तो इसका पौधा बेल की तरह का होता है और ये पेट में नहीं उग सकता क्योंकि पेट में सनलाइट नहीं है, खाद नहीं है, मट्टी नहीं है, और उगने के लिए यह सब चीजें जरूरी हैं। बहरहाल बेहतरीन फवायद है जनाब तरबूज के अंदर, जिंक है इसमें, आयरन है। इसके बीज आप रोस्ट कर सकते हैं, यानी तरबूज के बीज रोस्ट करें, उसमें जैतून का तेल और नमक डालें, थोड़ी सी दालचीनी छिड़क लें, हल्की सी चीनी डाल लें, और ज्यादा अगर जायका उसका अच्छा करना है तो नींबू का जूस और चिली पाउडर डाल लें। जबरदस्त फ्राइड तरबूज के बीज तैयार हो चुके हैं। बहरहाल फास्ट और जंक फूड से तो बहुत बेहतर है ये चीजें हम खा लें। तो इसका रेड कलर वो लाइकोपीन की वजह से है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। जितना पका हुआ होगा तरबूज उतना अच्छा होगा। वाटरमेलन में अमाइनो एसिड्स होते हैं और सिट्रुलीन इसमें एक कंपाउंड है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, और एक नेचुरल पिगमेंट भी है बीटा क्रिप्टोजेंथिन। ये जॉइंट्स और हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है। एक मीडियम साइज तरबूज का स्लाइस आपको 9 से 11% तक विटामिन ए देता है जो कि आपकी आंखों के लिए और जिल्द के लिए बहुत जबरदस्त है। ये जो एक आदत बनी हुई है कि जी मीठा खाना है, बिलाशुबा मीठा इंसान की जरूरत है। और एक नई तहकीक आपसे शेयर करता हूं कि इंसान का पेट जब पूरा भरा होता है उस वक्त भी अगर उसके सामने मीठा आ जाए ना, साइंस कहती है कि उसका पेट थोड़ा सा फूलता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि अब और जगह बनानी पड़ेगी, और ये मीठा का असर है। तो जो वाटरमेलन है ये कंप्लीट डेजर्ट है, ये एक मीठा है, इसको आप मीठे के तौर पे खा सकते हैं क्योंकि एक कप आइसक्रीम में 300 कैलोरीज होती हैं जबकि तरबूज के एक कप में सिर्फ 45 कैलोरीज होती हैं। यानी वही आप जितनी आइसक्रीम है उतना ही तरबूज खा लें, मजा भी आएगा, फायदा भी होगा, कैलोरीज भी कम है, वजन भी नहीं बढ़ेगा। जबकि वैसे आइसक्रीम या कुछ और चीजें खाएंगे ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ेंगे और वजन भी बढ़ सकता है। तो फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री, नो सोडियम, नमक भी नहीं है ये तरबूज है जनाब। ब्लेंडर में डालें थोड़ा नींबू और फिर इसको फ्रीज कर दें, क्यूब्स बन जाएंगे, उनसे भी आप लुत्फंदोज हो सकते हैं। और वर्कआउट जो है, एक्सरसाइज, ये जो लोग करते हैं उनके लिए भी तरबूज बहुत जबरदस्त है। जब भी पसीना निकले उसके बाद तरबूज का जूस आप पी सकते हैं। नाउ कम टू वन हेल्थ टिप। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिकमेंडेशन ले लेते हैं कि महफूज खाना किस तरह हम पका सकते हैं, कौन सी एहतियातें इसमें करनी है। देयर आर 4 प्रिकॉशंस। नंबर 1, कीप क्लीन, सफाई ज़रूरी है, किचन की जो खाने पकाने में इस्तेमाल हो रहे हैं बर्तन चमचे वगैरह चॉपबोर्ड जो होता है सबकी सफाई ज़रूरी है। और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि सफाई निस्फ ईमान है और इस्लाम ने हमें सफाई सुथराई का ही दर्स दिया है। और फिर सेपरेट कुक्ड एंड रॉ फूड, पका हुआ और कच्चा खाना अलग अलग करें, इसको मिलाना नहीं है। कुक थॉरली, सही दर्जा हरारत पर खाना पकाया जाए, जिस तरह गोश्त के दर्जा हरारत मुख्तलिफ होते हैं, जो होल मीट होता है ना गोश्त जो होता है उसको 145 डिग्री फॉरेनहाइट पर पकाना है, और जो ग्राउंड मीट होता है कीमा उसको 160 से 165 डिग्री फॉरेनहाइट पर पकाना है। और आखिरी है जी, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, खाने को सेफ टेम्परेचर पर रखें, जब आपने स्टोर करना हो फ्रीज करना हो 40 डिग्री फॉरेनहाइट से कम पर उसको रखें। जब खाना ठंडा हो जाता है ना उसमें जरासीमों की ग्रोथ रुक जाती है, तभी जो फ्रीज खाना होता है उसको देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल, जब भी आप खाना पका रहे हैं तो महफूज पानी साफ पानी इस्तेमाल करें, जब आप पानी पी रहे हैं तब भी साफ पानी पिए, और जब आप पानी खाने में डाल रहे हैं उस वक्त भी पानी साफ होना चाहिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब अपनी नेक्स्ट गिजा की तरफ चलते हैं, बहुत ही जबरदस्त है जनाब। कुरान मजीद सूरह रहमान आयत नंबर 69, इन जन्नतों में मेवे और खजूरें और अनार हैं तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। जन्नतों में हर तरह के मेवे होंगे ना, खजूर और अनार अगरचा मेवा में दाखिल हैं लेकिन इनकी फजीलत की वजह से, इनके शर्फ की वजह से खास तौर पे कुरान मजीद में नाम के साथ जिक्र किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मुझे यह हदीस पहुंची कि जमीन में कोई ऐसा अनार नहीं जिसके दानों में जन्नती अनारों की पैवंदकारी ना की गई हो। तो जनाब अनार, फायदे हैं इसके बेशुमार, रोजाना खाने से चेहरे पे आ जाएगी बहार, दिल को आएगा करार, इसको खोलने और छीलने में उलझन महसूस ना करें, ऐसे लगता है ना पूरा छीलना पड़ेगा, खजाना छुपा है इसमें गजाइयत और सेहत का। इम्पेकेबल इंजीनियरिंग देखिए आपने, कितना प्यारा एक एक दाना सजा होता है और बीच में व्हाइट रंग की झिल्ली सी भी होती है, गौर से देखें तो दिल के वेल्व की तरह लगता है ये, सफेद झिल्ली जो होती है ना खाने वाली होती है, इसका छिलका सख्त है इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर जो बीज है एरल्स उनको कहा जाता है, एक अनार में 200 से 1400 तक ये बीज हो सकते हैं। अनार तीन किस्म के हैं, खट्टा मीठा और खट्टा मीठा, तीनों किस्म के अनार मजेदार होते हैं, और जितनी रिसर्चेज और तहकीक अनार पर हुई शायद ही किसी फल पर हुई होगी, ये दवाई थी जनाब, माजी में अनार को फल नहीं बल्कि दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, इट्स एन अल्टीमेट सुपर फूड एंड इट्स ए प्रिवेंटिव एंड थेराप्यूटिक एजेंट, इस फल को एक खजाने की हैसियत हासिल है, और एंटी माइक्रोबियल है, एंटी एथेरोजेनिक है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, बहुत ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन है, दिमाग की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और अनार के फल में प्यूनिक हैलोजेंस होते हैं जो इंसान को कैंसर से भी बचाते हैं। तो रोजाना 250 मिलीलीटर अनार का जूस यूरोलॉजिकल डिजीजेस, पेशाब मसाना वगैरह गुर्दे के जो मामला है इसमें बड़ा तकवीत देता है, और गुर्दे के अंदर पथरी बनने को भी रोकता है। वर्जिश से 30 मिनट पहले अनार का जूस पी लें, ये वर्जिश की अहमियत और फादियत को मजीद बढ़ा देगा, थकावट का एहसास भी नहीं होने देता, जख्मों के मुंदमिल होने में बहुत मौसर है, तिजारती लिहाज से अनार बहुत जबरदस्त फल है, ये ताज़ा खाया जाए, जैम में डाला जाए, मामलेट इसका बनाए, जूस में इस्तेमाल हो, एवरीथिंग इज बेस्ट। तो अनार का ये शोख रंग पॉलीफेनल्स फ्लेवोनॉइड्स की वजह से है और फल की क्वालिटी और कमर्शियल वैल्यू के लिए जरूरी है इसका रंग जो रेड होता है। तो मोहतरम सामीन इकराम, प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए कुछ हेल्थ टिप्स सुन लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम कंसेक्यूटिवली जल्दी जल्दी आपसे खाने के कुछ आदाब और कुछ तरीके शेयर करेंगे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। बैठने का जो खाने का तरीका है, फरमाया खाते वक्त उल्टा पांव बिछा दीजिए और सीधा खड़ा रखिए, या सुरीन पर बैठ जाएं, या दोनों घुटने खड़े रखें, या दो जानू बैठें, जिस तरह बैठेंगे जो तरीके बताए गए सुन्नत अदा हो जाएगी। और साइंटिफिकली आज ये जो तरीके मैंने आपको बताया, इन तरीकों से बैठ के देखें, इंसान के पूरे जिस्म का ना कोर पार्ट होता है, कोर कहते हैं अहम तरीन को, ये पसलियों के नीचे से शुरू होकर कूल्हे की हड्डी तक जाता है। अगर आप गौर करें यहां पर मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इस जगह पर ना मसल्स बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, जल्दी फैल जाते हैं, कोई रुकावट नहीं होती। तो अगर आपने इस जगह को खुला छोड़ दिया तो खाने से ये बहुत ज्यादा फैल जाएगा। याद रखिए पेट का ओरिजिनल साइज वो 80 ml होता है, 80 ml, और ये फैलकर 4 लीटर तक बढ़ सकता है, जो कि इसके ओरिजिनल से 50 गुना ज़्यादा है। तो इस जगह पर थोड़ा सा ना स्ट्रेस होना चाहिए। तो अगर इसको खुला छोड़ देंगे आप और अब खाना खाते जा रहे हैं तो फैलता जाएगा। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए सुन्नत तरीके, इस तरह बैठ के खाना खाएंगे ना, ये पूरा कोर जो है ना अलर्ट रहेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से खाने के बाद खलाल, खाने के बाद लकड़ी या तिनके से खलाल करना सुन्नत है। दिस इज़ फ्लॉसिंग योर टीथ। फर्स्ट डेंटल चॉइस की तहकीक के मुताबिक इट्स एन एनालॉजी दैट यू विल नेवर वॉश वन साइड ऑफ एनी डिश। ऐसा तो कभी नहीं होता कि आप बर्तन का सिर्फ एक हिस्सा साफ करें या बाकी गंदा रहने दें, बल्कि आप बर्तन को पूरी तरह से साफ करते हैं। तो दांत को जो आप ब्रश करते हैं ना, दांत के 2 हिस्से तो साफ हो गए, बाकी 2 इग्नोर हो रहे होते हैं और ये मसूड़ों की सतह रह जाती है, कोने खुदरे रह जाते हैं। तो जब आप फ्लॉसिंग करते हैं, खलाल करते हैं, तो ओवरऑल दांत की सफाई हो जाती है। और अगर गंद इसमें पड़ा रह जाएगा तो जरासीम अपनी कॉलोनी बना लेंगे अंदर, दांत खराब हो जाएगा, जिसे कहते हैं कीड़ा लग गया, और बाद में नुकसान होगा। जिंजिवाइटिस एक मसूड़ों की सूजन की डिजीज है जो उस वक्त लगती है जब हम दांतों की सफाई नहीं करते। तो इस सुन्नत पर भी अमल कीजिए, खलाल कीजिए। टेक लगाकर खाने से मना किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया टेक लगाकर खाना ना खाओ। और साइंस आज बताती है कि जब इंसान खाना खाता है तो उसका अंदाज बहुत अहमियत का हामिल है। हमारा जो खुराक की नाली है एसोफेगस, ये पेट के साथ कनेक्शन इसका होता है, और जहां ये दोनों मिल रहे हैं ना, वहां पर एक दरवाजा लगा हुआ है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। इसके 2 काम है, एक तो जब खाना खाया जाए ये दरवाजा खुल जाता है ताकि खाना पेट में गिर जाए, और दूसरा जो खाना पेट में चला गया ये वापस ना आ जाए, वरना दोबारा से गंदा गंदा सारा होता है। तो ये तेजाब और खाना, ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है इसका खुलना बंद होना आपके बैठने के अंदाज पर डिपेंड करता है। लेट के खाना खाएंगे, बहुत ज्यादा टेक लगी होगी, तो इसके खुलने बंद होने के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखिए कितना जबरदस्त हमें इसमें इस्लाह की गई। और फिर गर्म खाने के हवाले से हमें सिखाया गया, बताया गया कि गर्म खाना ना खाओ, इसमें बरकत नहीं है। और हमारे पास आज 59 तहकीकात का निचोड़ है कि ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म खाने की बात हो रही है, ज्यादा गर्म मुस्तकिल तौर पर खाना, इसको आप लेते हैं तो मुंह के और गले के कैंसर तक की वजह बन सकती है। वैसे भी बहुत गर्म खाना एकदम खाएंगे, मुंह मसूड़े वगैरह जल जाते हैं इससे, और जब जल जाते हैं तो फिर खाने का मजा भी नहीं आता। तो इन तमाम सुन्नतों को आपने पढ़ना है, यू नीड टू गो थ्रू। आपने खाने से पहले हाथ भी धोने हैं जो सुन्नत तरीका है, खाने से पहले आपने दुआ भी पढ़नी है जो सुन्नत तरीका है, हर लुक्मे पे या वाजिदू कहने की आदत बनाए, अल्लाह की हमद, अल्लाह ने रिस्क अता फरमाया, ऑल दीज थिंग्स। खाने का इस्लामी तरीका जनाब dawatislami.net, अभी जाइए इस वेबसाइट पर, बुक गैलरी को अप्रोच कीजिए और खाने का इस्लामी तरीका रिसाला डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, दूसरों तक पहुँचाइए, इंशाअल्लाह इसका बहुत फायदा होगा। आइए जनाब अपने आज की आखिरी गिजा की तरफ, कुरान मजीद सूरत अल वाकया आयत नंबर 28-29, बगैर कांटे वाली बेरियों के दरख्तों में होंगे और केलों के गुच्छों में। तफसीर सिरातुल जनान में है कि इन जन्नतों में मजे करेंगे जिसमें केले के जैसे दरख्त हैं जो जड़ से चोटी तक केलों के गुच्छे जैसे फल से भरे हुए हैं। तो दुनिया का सबसे मशहूर और पॉपुलर फूड कौन सा है जनाब? ये है केला। एक तवील तहकीक के मुताबिक जो हफ्ते में 4 से 6 केले खाते हैं उनमें गुर्दे की बीमारी के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। केला हैप्पी फूड है। अगर आपका दिमाग थोड़ा सा आउट हो रहा है, फॉगी हो रहा है, मूड जरा बिगड़ रहा है, 2 केले खा लें और फिर देखिएगा इंशाल्लाह मूड रीजॉयस हो जाएगा। NHS की गाइडलाइंस के मुताबिक केले जो हैं ये इंसान की सेहत के लिए ओवरऑल बहुत अच्छे हैं। याद रखिए केले दरख्त पर नहीं उगते जी, इसका जो पौधा होता है वैसे तो 30 फुट तक ऊंचा हो जाता है, लेकिन उस पर लकड़ी नहीं है, ये दरख्त की कैटेगरी में नहीं आता, हर्ब्स एंड शर्ब्स की कैटेगरी में आता है। इसका साइंटिफिक नेम है मूसा सेपियंटम और इसका मतलब है अक्लमंदों का फल, क्योंकि अकल को बढ़ाने के लिए जो कुछ चाहिए वो केले में मौजूद है। इट्स ए सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी। केलों का रंग काला काला क्यों हो जाता है? व्हाई बनानास आर ब्रूज्ड, ब्रूज्ड वाई, ये इसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको एथिलीन कहते हैं। जैसे जैसे केला पकता जाएगा ना इसका रंग काला होता चला जाएगा, यानी जो केला जितना काला स्याह होगा उतना वो पक चुका है, वो पकता जा रहा है। ये वो फल है जो पौधे से उतरने के बाद भी पकते रहते हैं, जैसे किन्नू है, पौधे से उतर जाए पकना खत्म, लेकिन ये पकते रहते हैं। बाज़ मुल्कों में इसको पुअर मैन फ्रूट भी कहते हैं, यानी गरीब लोगों का फल होता है ये। बहरहाल अब तो ऐसा नहीं है, रमजान मुबारक के अंदर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ट्रिप्टोफैन भी है जो मूड को अच्छा करता है। बनाना इज ए ह्यूमन फ्रेंडली फ्रूट, हमेशा से इंसान का ये दोस्त रहा है। केले के छिलके ज़बरदस्त लुब्रिकेंट होते हैं, जूता भी साफ करेंगे आपका, और नेचुरल फर्टिलाइजर भी हैं, ये कुदरती खाद भी है। तो मदनी चैनल के नाजरीन, आपने सुने फवायद, वो ग़िज़ाएँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाईं, वो ग़िज़ाएँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने सुना कि कितने साइंटिफिक बेनिफिट्स इन ग़िज़ाओं के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी हम कोई काम करें, काश ऐसा हो कि हम अपने दीन इस्लाम से सबसे पहले उससे रहनुमाई हासिल करें, इंशाल्लाह ये दुनिया और आखिरत में भी भलाई का सबब है, बीमारियों से भी बचाएगा। जो चीज़ इस्लाम ने सिखाई वो सबसे बेहतरीन है। मदनी चैनल देखते रहिए।
वाले मदनी मदीने।